उसका पैलेस्टीनियंस का जो है जीनोसाइड करे, और इसराइल जो है अगर उसको जो है अपनी ज्यूइश सिक्योरिटी बड़ी प्यारी है, तो इसी तरह उनको पैलेस्टीनियंस जो है उनकी भी जो सिक्योरिटी है वो भी प्यारी होनी चाहिए। और लेकिन ये जो सारी बातचीत चल रही है ये इसके ऊपर चल रही है कि हम टू स्टेट जो सोल्यूशन है उससे रिफ्रेन करें, और डील नहीं करना चाहता है यूएस की गवर्नमेंट 700,000 इसराइली सेटलर्स जो है वेस्ट बैंक में उनके साथ।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी
जी अच्छा, ईरान जो है उसने आज बहुत ज्यादा वार्निंग भी दी है और बहुत ज्यादा बुरा भी मनाया इस चीज का कि कॉन्स्टेंटली यूएस जो है वो अटैक्स कर रहा है इराक और सीरिया के ऊपर, और वो कह रहे जी कि ये जो तीन यूएस सोल्जर्स जो हैं इराक में जो सॉरी सीरिया में जो मारे थे तो उसका हम बदला ले रहे हैं, और ये ईरान ने मारे हैं। ईरान ने सारी की सारी चीज को डिनाई किया था, उन्होंने कहा था जी हमारा कुछ भी लेना देना इसके साथ नहीं है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जो है नसर कनानी, उन्होंने आज कहा है कि ये यूएस के अटैक्स जो है दे आर क्लियर वायलेशन of sovereignty and territorial integrity of Iraq and Syria, international laws, UN charters, और ये जो है Zionist regime जो है उसको support कर रहे हैं, और ये जो US की involvement है region के अंदर under the you know overshadow of Zionist regime in Gaza, ये बहुत ज्यादा region के अंदर नुकसान पहुंचाएगी। ये constantly जो यहां पे interfere कर रहे हैं इससे regional international peace और security जो है वो खराब होगी। इन्होंने आज urge किया है इराकी ministry of foreign affairs के spokesperson ने United Nations Security Council international community को कि ये सारे का सारा crisis जो है इसको रोकने की कोशिश करें। उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी की सारी इलाके के अंदर टेंशन है इट इज बिकॉज ऑफ इसराइल, क्योंकि उसने एक ऑक्यूपाई किया हुआ है पैलेस्टीनियंस का इलाका, वहां पे कॉन्स्टेंटली मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं गाजा में और जीनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस का। अनलिमिटेड यूएस सपोर्ट जो है इसमें उनको हासिल है, इसलिए वो बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं। यूएस जो है आपको पता ही है कि यहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस चलाता है, और तकरीबन 30,000 यूएस सोल्जर्स जो थे वो रीजन में थे, लेकिन अक्टूबर 7 की वॉर के बाद यूएस ने थाउजेंड ऑफ एडिशनल जो फोर्सेज हैं वो यहां पे भेजे थे, और उनके वॉरशिप्स और उनके तैयारे और भी बहुत कुछ जो है अब इलाके में यानी कि मिडिल ईस्ट में आ गए हैं। इसके साथ साथ सीरिया के साथ साथ इराकी गवर्नमेंट जो है उसने भी कहा है कि ये जो अग्रेसिव स्ट्राइक्स हैं इराक के ऊपर बाय यूएस, तो ये यूएस जो है ये झूठ बोल के ये सारा कुछ कर रहा है, और पब्लिक ओपिनियन जो है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन उसको हमारे खिलाफ कर रहा है, ये वायलेशन है ऑफ इराकी सॉवरेनिटी। इसराइल के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी की सारी लड़ाई जो है ये मिडिल ईस्ट के अंदर और ज्यादा धुआं देगी कॉन्फ्लिक्ट को, और बहुत ही डेंजरस तरीके से ये आगे बढ़ रही है और ये सारे के सारे इलाके को इनस्टेबल करेगी। तो न सिर्फ ईरान ने बल्कि इराक और सीरिया ने भी आज यूएस पे काफी ज्यादा एतराज किया है। अच्छा जनाब, जर्मनी जो है उसमें अब कोई ना कोई जरूर प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। आज 15,000 के करीब लोग जो है वो जर्मनी की स्ट्रीट्स के ऊपर थे, और ये है देवर अगेंस्ट फार राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी जो है AFD जिसको बोलते हैं उसके अगेंस्ट, और ये जो मोर्चा इन्होंने निकाला हुआ है वो सिटीज ऑफ ड्रेस्टन, हैनोवर और बर्लिन के अंदर भी है। बर्लिन के अंदर जो है पुलिस उसने कहा जी कि ये रिस्टैग पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है उसके बाहर बेताजा ये लोग आके जमा हुए थे और ये स्लोगन्स दे रहे थे, वी आर द फायर वॉल अगेंस्ट राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो के जो है सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को और इनके अगेंस्ट हैं। चांसलर ओलाफ शोल्स जो है उन्होंने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये साइन है फॉर डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एंड अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा जी कि जर्मनी की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो फियर करती हैं कि AFD जो है वो कहीं ये जो आने वाली थ्री स्टेट इलेक्शन है सेप्टेम्बर में ईस्टर्न जर्मनी में उसको स्वीप ना करें, और ये जो अभी एक रीसेंट पोल आया था जर्मनी के अंदर जिसमें कि उन्होंने कहा था कि AFD के लिए वैसे तो सपोर्ट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बिलो 20% है सिंस जुलाई, लेकिन उसके जो दो बाकी के भी जो अपोनेंट्स हैं वो भी कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, जो इसकी पोजीशन जो है सेकंड है। मेन अपोजिशन जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो 32% पे है, और शोल्स जो कि इस वक्त रूल कर रहे हैं जर्मनी को उनकी जो सेंट्रल लेफ्ट डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं वो थर्ड नंबर पे हैं विद 15% जो है वो सपोर्ट, तो उसमें जो है उनको डर लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी इनकी सपोर्ट आ गई तो कहीं ये राइट विंग वाले जर्मनी के अंदर ना आ जाएं। चिली के अंदर जी आज जो वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं उनकी वजह से बेतहाशा जो है नुकसान हुआ है। 112 के करीब अभी तक जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है और हंड्रेड जो हैं वो मिसिंग हैं। प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक ने कहा है जी कि ये जो कैजुअल्टीज हैं इनका नंबर जो है राइज कर सकता है क्योंकि फॉरेस्ट में जो आग लगी हुई है बेतहाशा तेजी से बढ़ रही है, खासतौर पर वाल्पाराइसो के एरिया जो है वहां पर। और वो कहते हैं जी कि ये बड़ी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड है। यहां पर जो 200 के करीब लोग मिसिंग हैं वो विना डेल मार जो सिटी है उसके पास है। ये बड़ा ही पॉपुलर बीच रिजॉर्ट है और इसके आसपास का जो नेबरहुड है ईस्टर्न एज ये भी जो बड़ा मशहूर है दुनिया के अंदर, यहां पे एनुअल इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। और यहां पे जो गवर्नमेंट है उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस की है यहां पे। और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब। नान एंड कबोब जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त, आपको पता ही है कि ग्रिल किस्म के खाने बनाते हैं, हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है। तो अगर आपको इनके पास जाके खाना है तो आप ये इधर नान एंड कबोब मॉडर्न अफगान किचन जो है वहां पे इनका जो आउटलेट है उसमें आप 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसेस आगा में जाके खाएं। इनका नंबर है 9052829797। इसके अलावा ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे जो है वो है विलेज टेस्ट, फैसल चड्डा साहब होते हैं, दो रेस्टोरेंट्स हैं, आप इनके पास जाएं और आप मजे कर सकते हैं, इनके खाने को एंजॉय का मजा ले सकते हैं। एक इनका रेस्टोरेंट है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में। यहां पे अगर आपको जाना है और ऑर्डर डालना है तो आप कॉल करें एट 9052323663, या कि अगर आपको ओकविल में जाना है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर तो आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 9052262294 पे, तो आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हैं यहां पे करें। पाकिस्तान के अंदर जनाब आज फिर से टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं केपी के डीआई खान के अंदर, और यहां पे 10 जो सोल्जर्स हैं सॉरी 10 जो पुलिस वाले हैं उनकी डेथ हुई है और 6 जो हैं जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये जो अटैक था ये पुलिस स्टेशन के ऊपर था। पुलिस का कहना है कि इन टेररिस्टों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर हैवी वेपन से जो तहसील दराबान है वहां पे अटैक किया, और वो कहते हैं जी कि इन्होंने सारी साइट से ग्रेनेड्स फेंके, हैवी गन फायर किया। पुलिस ने इसका जवाब दिया लेकिन टेररिस्ट जो हैं वो रात के अंधेरे में भागने में कामयाब हो गए। इंजर्ड जो हैं उनको DHQ हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया है। अभी पिछले महीने ही 3 जो पुलिस ऑफिसर्स थे और 2 सोल्जर्स जो थे उनको टेररिस्टों ने मारा था कोहाट मीरन शाह लकी मरवत में। इसके अलावा आपको पता ही है थोड़े दिन पहले रेहान जेब जो कि केपी असेंबली से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ाई कर रहे मतलब कैंपेनिंग कर रहे थे उनको भी वजीरिस्तान के अंदर मार गिराया गया है। यंग लड़का था बिल्कुल बेचारा ये। तो काफी जो है यहां पे लड़ाइयां जो हैं टेररिस्ट अटैक्स जो हैं यानी काफी बढ़ गई हैं। अच्छा जी, बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज बड़े निशाने लिए नवाज शरीफ साहब के लिए, और उन्होंने कहा जी कि जो बंदा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है वो फिर से अब अमीर उल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 4थी दफा जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैकडोर चैनल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आने के लिए, क्योंकि वो अब उन्होंने खुद ही कहा है कि वो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये भी बहुत ज्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स नवाज शरीफ, वो उनको ज्यादा फेवर कर रही है, और हमारी अलायंस पीएमएलएन के साथ अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने के साइन किया था कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और जिसका नारा ये था वोट को रिस्पेक्ट दो, लेकिन अब ये इन सबसे पीछे हट चुकी है और ये जो है ज्यादा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जैसी मेंटालिटी जो है ये अपनाते जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी MQM जो है वो एक इंतहाई एंटी पाकिस्तान पार्टी है, उसके साथ हम अलायंस नहीं कर सकते हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल अपना वोट जो है वो वेस्ट मत करें और हमको वोट दें, यानी कि ज़ाहिर है अपेरेंट रेफरेंस उनका है PTI के ये जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एज इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि किताब को भी वोट ना दें, और इसमें उन्होंने अटैक किया JUIF को क्योंकि ये उनका पोल सिंबल है। वो कहते हैं जी कि ये नेशन को जो है वो रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो आप इन लोगों को बिल्कुल वोट्स ना दें। کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اب بلوچستان کی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں ان کو ریسٹرکٹ رکھا جائے گا سینسٹیو پولنگ ایریاز کے اندر، اور سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ رکھی جائے گی کیونکہ ٹیررسٹ اٹیکس بلوچستان میں بہت بڑھ گئے ہیں. بلوچستان کے کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر جان اچکزئی نے آج ہی اپنے ایکس کے اوپر لکھا کہ کیونکہ ٹیررسٹ جو ہے ان کا رسک بہت زیادہ بڑھ گیا کیونکہ وہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ٹو کمیونیکیٹ اپنے یہ ناپاک جو پلانز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو اس لیے جو فیبرری 8 کے الیکشن آنے والے ہیں اس کے لیے سٹیزنز کی سیفٹی کے لیے ہم تربت مچ چمن کے خاص طور پہ ایریاز میں انٹرنیٹ سروسز کو ریسٹرکٹ رکھیں گے تاکہ کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیکس نہ ہو سکے. پچھلے دنوں میں یہاں پہ انہی علاقوں میں زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس دیکھے گئے ہیں. ایزی پی نے آج گورنمنٹ کو بالکل منع کر دیا ہے کہ وہ پی آئی اے کو بالکل پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے نہیں جا سکتے ہیں, اور انہوں نے مینشن کیا ہے سیکشن 230 آف الیکشنز ایکٹ جس میں کہ یہ بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس طرح کا فیصلہ نہیں لے سکتی ہے. ایزی پی کے سیکرٹری جو ہیں ڈاکٹر آصف حسین, انہوں نے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کامران علی افسل کو لکھا ہے اور انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہا ہے کہ بالکل اس طرح کا کوئی بھی اگریمنٹ وہ سائن نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ڈیسیجن نہ لے لیا جائے انڈر سیکشن 230. اور وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو اس میں انہوں نے کہا جی کہ نیسسری آپ ایکشن لیں اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکٹوز آف ای سی پی, اور تمام کے تمام ڈاکیومینٹس اور پرائیویٹائزیشن کا پلان اور وہ سارا کچھ پہلے ہمیں دیں, ہم اس کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد پھر اگر ہم نے اجازت دی تو پھر آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ اونڈ ادارہ ہے. پاکستان نے آج ڈسپیچ کیا ہے جی ففتھ ٹرانشے آف ہیومینیٹیرین ایڈ جس کے اندر بہت ساری ونٹر ٹینٹس اور ٹرپولینز اور بلینکٹس ہیں فار گازا, اور یہ سارا کا سارا جو ہے ڈسپیچ انہوں نے کی ہے پی ایف کے جو C-130 طیارہ ہے اس کے اندر. منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے انہوں نے اپنے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے یہ لینڈ کرے گی العرائش ایجپٹ کے اندر جہاں پہ کہ یہ سارا کا سارا سامان پاکستانی امبیسڈر ٹو ایجپٹ جو ہے ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ آن ورڈ ڈلیوری جو ہے اس کے انتظامات کر سکیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اپنی یہ جو اس طرح کی ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ غزہ کے لیے, اور ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو یہ جو ہے کرائسس ہے اس کو ہم ایڈریس کریں گے. ایزی پی نے آج کہا ہے جی کہ اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا 260 million بیلٹ پیپرز کا ڈلیوری فار اپ کمنگ جنرل الیکشنز. ان کے ای سی پی کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ڈلیوری جو ہے کی جائے گی روڈ بائی ایئر اور ہینڈ اوور کی جائے گی فرام گورنمنٹ پرنٹنگ پریس ٹو ڈسٹرکٹ آر اوز اور ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان تک ہم یہ پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں جی چونکہ ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہیں سردی بھی ہے تو بہت سارے ہم کو چیلنجز ہیں, لیکن بیڈ ویدر ہے, لیکن پھر بھی ان تمام چیلنجز کو ختم کرتے ہوئے ہم نے الیکشن سے پہلے ہی یہ سارے کا سارا جو بیلٹ پیپر ہے یہ بنوا لیا ہے اور یہ اب ہم جو ہے سارے ملک میں بھیج رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے وقت پہ کام کیا ہے تاکہ ووٹرز کو کوئی بھی تکلیف نہ ہوئے تاکہ وہ ایفیشینٹلی اور آرگنائز مینر میں اپنا ووٹ ڈال سکیں. کراچی کے اندر جناب ہوئی ویکینڈ کے اوپر بے تحاشا بارشیں, اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس لیے ساری جو ہے مین سڑکیں وغیرہ جو تھیں وہ اس میں گھٹنوں گھٹنوں جتنا پانی جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ لوگوں نے بے تحاشا اعتراض کیا کیونکہ الیکشنز بھی ہیں دو دن کے بعد, تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہے پی 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 کی کارکردگی پچھلے جو 15 سال سے اس صوبے کے اندر جو حکومت کر رہے ہیں. اس کے اوپر کراچی کے جو میئر ہیں مرتضی وہاب, انہوں نے کہا ہے کہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ٹیم ہے اور کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن ہے اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جو ٹیمز ہیں وہ کانسٹنٹلی کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو ٹائر لیس ایفرٹس ہیں پچھلے 20 گھنٹے میں میں ان کو آپ کو شاباشی دیتا ہوں, اور یہ جو کوئی بھی آپ کے ہارڈ ورک کو نکھار رہے ہیں آپ ان کے کرٹیسزم کو نہ سنیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. انہوں نے کہا جی کہ کراچی کی جتنی بھی میجر جو تھورو فیئرز تھیں ان سب سے پانی کو نکال لیا گیا ہے, اور جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا تھا خاص طور پہ جو لیاری کے ایریے میں اور 2 چندری گڑھ روڈ کے اوپر وہ سب کا سب پانی جو ہے وہاں سے ریموو کر لیا گیا ہے. ہیوی رین فال کی وجہ سے ہب کنال جو ہے اس کے اندر جو ہے کریکس آ گئے تھے, اور ہب کنال جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کو پانی سپلائی کرتی ہے, تو اس لیے واٹر سپلائی ہم نے بند کی ہے ٹیمپرری بیسس کے اوپر, ہم اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. جیسے یہ ریپیئر ہو جائے گی جو کہ ایمرجنسی بیسس پہ کی جا رہی ہے تو لوگوں کو پانی جو ہے وہ بحال کیا جائے گا. مین وائل جو ہے لوگ ٹینکرز جو ہیں ان سے پانی منگوا سکتے ہیں. तो उन्होंने कहा जी कि शहर के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिर्फ हमारे जो जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वरना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो बारिश गिरी तो क्या कर सकते हैं?
हाँ, ज्यादा पानी, अगर बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा ना?
पानी
आएगा। हाँ, आपको पता नहीं है इस बात का? हाँ,
भाई बस देख ले।
हाँ, देख ले, खाम खा लोग इतराज छोटी छोटी बातों पे।
ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी,
ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा। अब ज्यादा बारिश आ गई अब क्या करेंगे?
पानी के जाने का कोई इंतजाम नहीं किया?
नहीं नहीं।
हाँ,
हम कहते हैं बारिश एक रहमत है, उसको रहने दो, हमारे पास खड़ा रहने दो, हमारे पास है। तो अब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, नाउस के अंदर इतना पानी है। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर आपको पता ही है कि एक दफा आए थे जो थे ये पेंडोरा पेपर्स, जिसको कहा जाता था पेंडोरा बॉक्स को लिया है, पेंडोरा पेपर्स के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाई गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन का लग रहा है कुछ कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक दफा से फिर ये पेंडोरा बॉक्स जो है, इसका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है हिंदुस्तान में, उन्होंने प्रोब खोल दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन ओनर्स हैं बड़े बड़े, जो कि ये ऑफशोर फर्म्स चलाते हैं, जो कि 2021 में ये जो सारी की सारी पेपर्स आए थे सामने, 11.9 मिलियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे अबाउट 14 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें के डिटेल्स दी गई थी फॉर द ओनरशिप ऑफ 29,000 ऑफशोर एंटिटीज, जिसको के सुपर रिच जो है वो यूज करते हैं और पैसा जो है अपना एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ये सारे का सारा डेटा जो था ऑब्टेन किया था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, और उन्होंने इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था 150 मीडिया आउटलेट्स के साथ। इसके ऊपर अब फिर से हिंदुस्तान के अंदर प्रोब खोल दिया है, और वाह जी वाह, क्या बड़े बड़े नाम आए हैं इसके अंदर। तो बड़े बड़े नाम जो आए हैं उसमें जो सबसे ऊपर नाम है जी, वो अनिल अंबानी साहब का है। आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी के ये भाई हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ एडीए ग्रुप। और इनके बारे में उन्होंने कहा जी कि 18 ऑफशोर कंपनीज हैं जर्जी में, वर्जिन ब्रिटिश वर्जिन अटलांटिक आइलैंड्स में, साइप्रस में, बिटवीन 2007 एंड 2010 इनकी 7 कंपनियों ने ह्यूज किस्म के पैसे जो थे वो बोरो किए थे, एंड दे इन्वेस्टेड 1.3 बिलियन US डॉलर्स, और कुछ मनी ट्रेल जो है इनका पता नहीं है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी बाबा गुथु रघुराम शेट्टी, वो और उनकी फैमिली जो है उनको जो है बुलाया था बेंगलुरु के अंदर 2020 में फॉर नॉन पेमेंट्स ऑफ हेफ्टी लोन्स फ्रॉम इंडियन बैंक्स। वो कहते हैं जी कि इन्होंने वायलेशंस की हैं 1,000 करोड़ रुपए की, और इनके इन्होंने जो है बहुत सारा इनसे जो पैसा निकलवाया भी गया था, जो इनकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी वर्थ 53 करोड़ से थोड़ी ऊपर, वो उसके जो है वो हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि 1,000 करोड़ की वायलेशंस हैं, तो वो सारा पैसा जो है वो रिकवर करना है। और जनाब गौतम हरी सिंघानिया, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रेमंड ग्रुप, वो कहते हैं जी इनके ऊपर भी बहुत सारी जो ईडी ने अटैच की हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज वर्थ 1,000 करोड़। जॉन शॉ यूके सिटीजन है, हस्बैंड ऑफ बायकॉम चीफ किरण मजूमदार शॉ हैं। इनकी हालांकि डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके क्या मनी ट्रेल्स हैं कुछ पता नहीं है। सचिन तेंदुलकर एंड हिज फैमिली, इनके ऊपर भी जनाब आया है कि इनकी भी जो है कुछ अलेजली इलीगल इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। भाटिया फैमिली, वो कहते हैं जी कि ये जो रन करते हैं सीताराम भाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन दिल्ली में भी, इनके पास भी 2 स्विस बैंक अकाउंट्स हैं और इनके भी एसेट्स वर्थ 35.39 मिलियन डॉलर्स के वो हैं जो कि हमारे सामने हैं। उसके अलावा कितने हैं उनके ऊपर भी बात करने की ईडी कहता है जी कि हमको जरूरत है। नीरा राधिया, इसके अलावा वो कहते हैं कि इनके भी जो ऑफशोर फर्म्स हैं उनके बारे में जो 1,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है हमें कुछ पता नहीं है कि ये कैसे जो है पैसा आया। हरीश सालवे, गज सिंह जो है आपको पता ही है बड़े मशहूर महाराजा ऑफ जोधपुर हैं और एमपी भी रहे हैं, वो कहते हैं जी इन दोनों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गौरव बर्मन, वो कहते हैं जी कि इन्होंने तो 2 मिलियन डॉलर्स जो है वो तो ऐसे दे दिए जैसे पीस ऑफ केक होता है, और बहुत बड़ी ये भी कंपनीज चलाते हैं ये जो है। ही इज पार्ट ऑफ ओनर्स ऑफ आईपीएल टीम जो है किंग्स 11 पंजाब, तो वो कहते हैं जी कुछ पता नहीं चल रहा है ये पैसे कहां से आ रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़, वो कहते हैं जी कि इनके पास भी ह्यूज किस्म की जो है ये फार ईस्ट के अंदर जो ये इनके सारे कंसर्न हैं, खासतौर पे ये जो उदयपुर पैलेस था इनके पास जिसके थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शंस करते थे, उसके ऊपर ईडी ने अप्रोब बिठाई है। ललित गोयल, वो कहते हैं जी कि इनके पास भी जो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की थी 77 मिलियन US डॉलर्स की ऑफशोर स्ट्रक्चर के अंदर, वो कहां से आई कुछ मालूम नहीं है। फॉर्मर रक्सबी प्रोमोटर्स जो हैं शिविंदर मलविंदर, और शलविंदर सिंह और मलविंदर सिंह दोनों भाई, वो कहते हैं जी इन्होंने बोरो किए थे अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए ऑफशोर्स में 5.1 मिलियन US पाउंड्स, और ये पैसे लिए थे इन्होंने बर्कलेज बैंक से। कहां से आए कैसे इनको दिए गए कुछ पता नहीं है। प्रीति चंद्रा, वाइफ ऑफ यूनिटेक प्रोमोटर संजय चंद्रा, वो कहते हैं जी कि इनकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं 1,000 करोड़ से ज्यादा की हैं और इनके बारे में भी कुछ पता नहीं है ये कहां से पैसा आया है। दाऊद इब्राहिम नोन जो डॉन है, उनके बड़े करीबी दोस्त इकबाल मिर्ची, जिनकी के डेथ हो गई थी 2013 में, उनकी भी थी तकरीबन 17 ऑफशोर कंपनीज और उसकी वर्थ जो थी 799 करोड़ रुपीज थी। इसके अलावा और क्या कुछ था मालूम नहीं है। ईडी ने इनके ऊपर भी एक प्रोब बिठाई है। दीवान हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के कपिल वाधवन और धीरज वाधवन, वो कहते हैं जी इन्होंने इंडियन बैंक्स को डिफ्रॉड किया और इंडियन बैंक से सोच सकते हैं ओवर 88,000 करोड़ इन्होंने इंडियन बैंक से लिया। 88,000 करोड़। 88 को क्या कहते हैं उर्दू में माजी भाई? 88,000 करोड़ के इन्होंने जो हैं वो बैंक से लोन्स लिए हैं। कैसे दिए इनको पता नहीं है। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील जो की थी बाकुल नाथ ने, जो कि कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर जो हैं कमल नाथ उनके बेटे हैं, और इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं राजीव सक्सेना, उनके बारे में भी कहते हैं जी कि इनकी अभी तक जो प्रॉपर्टी सामने आई हैं 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की हैं, लेकिन इनके जो फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू 49 मिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। तो जनाब आज इन सबके ऊपर जी प्रोब खोल दिया है।
इनको एक ही तरीका है, इनको कुछ सीखना चाहिए, इन सारे लोगों को कुछ सीखना चाहिए।
पाकिस्तान की तरफ देखें,
हमारे मौलाना साहब को लोगों ने कहा कि आपके पास इतने सारे इतनी प्रॉपर्टीज आ गई दुनिया में और इतना जो आपका घर चल रहा है और इतना बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं आपने,
इतनी बड़ी गाड़ी में फिर रहे हैं,
हाँ तो ये कहाँ से पैसा आया? कहने का अल्लाह की रहमत है। अब उस पर कोई मैं कोई
खुदा की कुदरत,
खुदा की कुदरत है, इसको तो आप डिनाय नहीं कर सकते। तो अगर वो अल्लाह की तरफ से मुझे मिल रहा है तो आप भी नेक बंदे बन जाएं, आपको भी अल्लाह देगा। लीजिए साहब,
ये आपने क्या कहा 88 को, क्या कहा 88 का?
88 जी,
88,000 करोड़ मौजूद भाई बैंक से लिए और उनको वापस नहीं किया।
बहुत बड़ी बात है,
देखो मौजूद भाई
छोटी सी बात है ये,
वो ये जो साढ़े मुल्क में बैठे हैं ये तो बेचारे फिर मुझे चिल्ली चोर लग रहे हैं इनके सामने। हैं वो स्कीम, इन्होंने खरीफ लोग हैं यार ये सारे, इनको एवं फड़ा हुआ है, सता रहे हैं
खाम खा गली।
किसी ने जो है वो कोई 10 मिलियन की कोई कर ली करप्शन, मतलब
घड़ी बेच दी,
हाँ बेच दीदी, एक मर्सिडीज गड्डी ले ली, एक BMW गड्डी ले ली, तो करप्शन ए देखो जरा इसन कहते हैं करप्शन। 88,000 करोड़
हाँ जी
लिए और फिर वापस नहीं किए।
नहीं किए
पायन, व्हाट इज दिस?
नहीं तो ले लो अगर ले सकते
हो। ओए होए होए होए, पैसे इतने पैसे गिनते कैसे होंगे? ये
गिनने की जरूरत ही नहीं
होती। अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दो बस। ओके जी, ओके। अच्छा जनाब आज जो है अनु मलिक साहब ने शाहरुख खान साहब को याद किया, उन्होंने कहा जी 25 साल पहले अब्बास मस्तान की एक कॉमेडी मूवी आई थी बादशाह, जिसके के अंदर थे शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना। वो कहते हैं जी कि ये बड़ी कल्ट मूवी बन गई है, लेकिन हुआ ये था कि हम एक दफा फ्लाइट में सफर कर रहे थे और मैंने ऐसे ही इसकी ट्यून जो है वो ऐसे हम की शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान जो उनको ये ट्वीन मेरी बड़ी पसंद आई है, ट्यून बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने कहा हाँ इसमें तुम वर्ड बादशाह सेट कर सकते हो। कहते हैं बस जी वो दिन और आज का दिन किंग खान का नाम जो है बादशाह पड़ गया। तो किंग खान का नाम वो कहते हैं जी बादशाह, जो कि टाइटल ट्रैक था इस मूवी का, बादशाह मूवी का, उस दिन से इसको लोग जो है बादशाह कहते हैं, उधर से शुरू हुआ इसको बादशाह कहना है जी। ये चक्कर है। आमिर खान साहब जो है उनको एक दफा आज कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि जब लोगों की डिवोर्स हो जाती है तो उनके बड़े बिटर किस्म के जो हैं वो रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। आमिर खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरी जो फॉर्मर वाइफ है प्रोड्यूसर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर किरण राव, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि वो मेरी लाइफ में आई और अभी भी हम जो हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और ये किस डॉक्टर ने कहा है कि जब आपकी डिवोर्स हो जाए तो आप एक दूसरे के एनिमीज बन जाएं। मेरा जो उसके साथ सफर था बहुत ही फुलफिलिंग था, मेरा उसके साथ जो है बड़ा ही जो है पर्सनल और प्रोफेशनल ताल्लुक रहा है और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मेरी वो वाइफ रही है। ठीक है,
आई होप सो।
हाँ खबर मानिका साहब तुम सुन रहे हो। ए ये होते हैं डिसेंट लोग, समझ आइए आपको पैन, व्हाट आर यू डूइंग। और जनाब हुए ग्रैमी अवार्ड्स 2024, इसके ऊपर कुछ लोगों को आया गुस्सा है जी। उसमें थे हमारे कनेडा के ड्रेक, और इसके अलावा SZA हैं जी, इन्होंने कहा जी कि ये जो टेलर स्विफ्ट को इतने बेतहाशा अवार्ड्स मिले हैं, खासतौर पे ये एल्बम ऑफ द ईयर का जो इनको अवार्ड दिया गया है ये किस चैकुर में दिया है। फैंस जो है, फैंस भी बड़े नाराज रहे, खासतौर पे SZA के जो है, टेलर ने बड़ी हिस्ट्री जो थी, यानी कि टेलर स्विफ्ट ने बड़ी हिस्ट्री बनाई, उनको उन्होंने जो है ये टॉप ऑनर्स जो हैं जीते ग्रैमीज के ऊपर, जब उनके एल्बम मिडनाइट्स जो हैं उसको बड़ा जबरदस्त जो है वो जाहिर है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और यहाँ पे जो म्यूजिक आइकॉन है सेलिन डियोन वो भी वहां पे आई,
मगर ये और टेलर स्विफ्ट को जो है ये चौथा अवार्ड मिला है, सारे रिकॉर्ड
ब्रेक कर दिए ना जी। हाँ जी, तो ड्रेक जो है तो उन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम के अपने ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड्स होते हैं ये इट इज जस्ट ओपिनियन ऑफ फ्यू पीपल, ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया का ये आपके बारे में ओपिनियन हो, आप अपना ग्रेट काम करते रहें, और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ये कुछ लोग कौन हैं। और वो कहते हैं जी आई एम रियली सरप्राइज, उन कुछ लोगों के नाम तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब था बड़ी फेवरेटिज्म दिखाई गई है। SZA जो है उनके भी बड़े बहुत ज्यादा जो है वो अफसोस किया उनके भी जो है फैंस ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो है इनको मिलना चाहिए था एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो पाया ने फिर बड़ी गर्मा गर्मी हुई,
ज्यादती हो गई
है,
ज्यादती हो गई। मगर सेलिन डियोन का जो है ना वो जो सरप्राइज,
दैट वाज वेरी नाइस,
पीपल हैव सीन हर इन द गोइंग इन द एलिवेटर, नोबडी न्यू देन दे फाउंड आउट कि सेलिन डियोन इन द एलिवेटर कमिंग अपस्टेयर्स, ये कैसे हो सकता है, एंड देन पीपल इन्वेस्टिगेटेड and they found out Celine Dion is coming.
It's coming.
That was very nice to see her.
Very nice to see her, yes. Aur jinab PCB ne kaha hai ki PSLN MPMLN PSLN PSL 9 के जो टिकट्स हैं वो जनाब अवेलेबल हैं, आप उनको खरीद सकते हैं pcb.tcs.com.pk से, जो है फरवरी 6 से 5 बजे ऑनवर्ड्स मैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी 17 से कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और वो कहते हैं जी कि जो इनके आपको फिजिकल टिकट्स दिखाने पड़ेंगे, आप ये जो प्रिंट करके ले आते हैं ये बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। और वो कहते हैं जी कि ये टिकट्स जो हैं $6,000 VIP, $3,000 premium, $2,000 first class और $1,000 जनरल के हो गए, लेकिन फाइनल जो कि मार्च 18 को होगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची के अंदर, उसका जरा टिकट थोड़े से ज्यादा होंगे, VIP 8,000, प्रीमियम 4,000, फर्स्ट क्लास 2,500, यस जनरल जो है 1,000, क्या चीज है 1,000 का, तो मजद भाई एक कुकड़ी भी नहीं बना दी होते,
8,000 का भी अगर वीआईपी का मिल रहा है आपको,
नॉट रियली मच,
आप खाना खाने जाए 8,000 रुपए आते हैं,
उससे भी ज्यादा मजे भाई। क्वालिफायर्स जो हैं उसके लिए 5,000 VIP, 2,500 प्रीमियम, 1,500 फर्स्ट क्लास, 750 जनरल, टू एलिमिनेटर्स जो हैं उसके लिए 5,000 VIP, 3,000 प्रीमियम, 1,500 फर्स्ट क्लास एंड 750 जनरल। तो ये जनाब सारी उन्होंने डिटेल्स दी हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पाकिस्तान जो है उसने जी क्वालिफाई किया है 2024 के ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीज में, उन्होंने बांग्लादेश को पांच रन से उन्होंने इनको बीट किया इन द सेकेंड सुपर सिक्स गेम इन बेनूनी, और उससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी किया था। पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है अनबीटन रही है इस टूर्नामेंट में, पांचों के पांचों इन्होंने मैचेस जो है वो जीते हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और फिर जो है बांग्लादेश के खिलाफ, तो इन्हें वड्यां को उन्होंने चंगे हैं,
हाँ,
बच्चे
हाँ,
हैं
हाँ,
और जनाब इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया 3-0 से टू विन डेविस कप टाई जो है डबल्स कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड ग्रुप वन प्लेऑफ में जो इस्लामाबाद में हो रहा था। इंडियन जो पेयर था सकेश मेनैनी और यूकी मेनैनी, उन्होंने आउटक्लास किया पाकिस्तानी अकील खान और मुजम्मिल मुर्तजा को। इसके अलावा जो है इन्होंने सिंगल्स में भी हराया पाकिस्तान को। इससे पहले जो मुकाबले इनके हुए थे दोनों के वो 2014 में हुए थे, जिसमें इंडिया ने इनको 4-0 से हराया था। और जनाब सबसे बड़ा सही जो मुकाबला होगा ना क्लैश ऑफ टाइटन्स, वो होने वाला है ड्वेन जॉनसन द रॉक का रोमन रेंस के साथ। ये सेकेंड बिगेस्ट टू बिगेस्ट ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू ई सुपर स्टार्स हैं ये फेस ऑफ कर सकते हैं इस ईयर में, आइदर April 6 और 7 को फिलेडेल्फिया में। तो जनाब ये जो है ना गेम देखने
इसका, इसकी टिकट नहीं मिलेगी
नहीं,
और ये $2,000 में
नहीं मिलेगी, नहीं नहीं
8,000 रुपए में भी मिलेगी,
ये $8,000 भी मिल जाए बड़ी बड़ी गल
है,
$50,000
रिंग साइड।
रिंग साइड या सड़ियों का तो थी बल्कि सड़ी तो थर्ड क्लास क्लास है, नहीं स्लीपर क्लास है।
हम रिंग साइड पे जाकर बैठ जाएंगे ना,
ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे, हम बैठेंगे जमीन पे बैठे,
जमीन
सू कुर्सी नहीं चाहिए, सर बस थले बिठा दो,
थले
बिठा। और जनाब मॉन्ट्रियल का जो ओलंपिक स्टेडियम है उसके रूफ जो है उसके ऊपर जी हम गरीब लोग 870 मिलियन कैनेडियन डॉलर जो है वो लगाने वाले हैं, और इसका कंप्लीशन होगा 2027 में। और आपको पता ही है कि कनाडा के अंदर जो है जो 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की जो गेम्स हैं वो भी होंगी, और ट्रोनो के अंदर पहली गेम होगी। और ये
मॉन्ट्रियल में कोई गेम नहीं
है, नहीं वो कह रहे हैं जी कि ये जो होस्ट कर रहे हैं मैक्सिको कनाडा और यूएस कर रहे हैं, 11 जून से ये शुरू हो रहे हैं, मैक्सिको के सिटी एजटेक में होगी वहां पे जो स्टेडियम है, और जो कनाडा में मैचेस हैं वो ट्रोनो और वैंकूवर के अंदर हैं, 5 ग्रुप मैचेस होंगे। इसके अलावा जनाब बीएमओ जो स्टेडियम है उसके अंदर 7700 की,
अच्छा उसका नाम चेंज कर दिया है,
हाँ चेंज कर दिया 700 की
फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये हमारे टूर्नामेंट चलेगा फीफा 26 तो उस वक्त तक उसको आप कहेंगे टोरंटो स्टेडियम,
हाँ हाँ टोरंटो स्टेडियम, यस अभी बीएमओ कह रहे हैं। तो ये है जी, तो बड़े तहे लगा रहे हैं, बड़ा कम कर रहे हैं,
हाँ जी
देखो थकेले इनके पास, ये नहीं कर रहे
एंड रिजल्ट देखे ना आप, टोरंटो सिटी जो है उसको 93 मिलियन देना पड़ेंगे, 93 मिलियन यस, और फिर प्रोविंस को भी ऐसे कुछ 90 मिलियन देना पड़ेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है इनकी, बट द एंड रिजल्ट इज द देखो नो टोरंटो जिसको पैसे की सब बड़ी जरूरत है $393 मिलियन दे गोना मेक,
या शुक्र है चलो पैसे बना भी रहे हैं, सवाल जाया कर कुछ
नहीं
कर दो
नहीं वो चले गए
वो चले गए बाजी भी आ गए ना, बाजी ने टैक्सेस ला देते
हैं, बचे
हाँ ठीक है। और जनाब हमारी एब्सोल्युटली लास्ट न्यूज जो है वो है ये जो हमारे पांच हॉकी जूनियर कनाडा टीम जो है उसके ये जो लड़के हैं ये जो सेक्सुअल अलेज सेक्सुअल असॉल्ट केस में जिनको नाम दिया गया है उनके लॉयर्स जो हैं आज फॉर द फर्स्ट टाइम कोर्ट के अंदर अपीयर हुए थे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये लड़के जो हैं इनका नाम है कॉर्टर हार्ट, माइकल मैकलियॉर्ड, डिलोन ड्यूब, कैल फूट और एलेक्स फर्मेंटन, इनके ऊपर आपको पता ही हमने बताया था कि 2018 में लंदन का जो होटल रूम था वहां पे एक औरत ने इनके ऊपर प्रेस किए थे चार्जेस कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर किया जब ये अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। लॉयर्स ने आज कहा है अपनी जो पहली कोर्ट जो अपीयरेंस थी उसमें कि ये जो इनके क्लाइंट्स हैं डिफेंड करेंगे अपने आप को इन एलिगेशन के अगेंस्ट और नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। क्राउन जो है वो कहता है कि नहीं हमारे पास बहुत सारा डिस्क्लोजर है। अब डिस्क्लोजर क्या होता है, डिस्क्लोजर रेफर करता है एविडेंस को जिसमें के स्टेटमेंट्स होते हैं, वीडियो फुटेज होती है, फोरेंसिक एविडेंस होती है, पुलिस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्राउन कहता है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो हम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, और फिर ये सारी की सारी चीज जो है डिफेंस काउंसिल को भेजी जाएगी टू सी कि ये सारा कुछ ठीक है कि नहीं है। इनकी जो नेक्स्ट कोर्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, तो अब देखेंगे जी उसके अंदर क्या।
अगर उस खातून ने जिसके ऊपर डिफेंडेंट है तो अगर उसने पहले से हॉकी फेडरेशन ऑफ कनाडा जो है उसके साथ डील कर ली थी 2 साल पहले और 2 साल पहले करने के बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले, तो अब दोबारा से ये केस जब आया ना तो इतना इसमें वजन नहीं होगा।
माजिद भाई वो नहीं जो लिए होंगे ना वो 1-2 मिलियन लिए होंगे, अभी 2-4 मिलियन और चाहिए ना?
नहीं नहीं काफी मिलियन लिए
अब और चाहिए ना।
अच्छा
वो खत्म हो गया ना पहले वाले,
ये अब तो क्राउन ने शुरू किया
हाँ जी हाँ,
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुमने ले लिया तुमने सेटलमेंट किया मगर देर इज अ क्राइम।
क्राउन को पूछो तीनों की तकलीफ है भाई, जब कुड़ी ने पैसे ले लें तो थानू की तकलीफ है भाई,
खत्म हो गया बात,
खत्म हो गई बात, मतलब मिट्टी पाओ हूं अगे चलो आहो वैसे भी इलेक्शन आने वाले।
I feel so bad
for those boys, लेकिन उन्होंने गलती की ना माजिद भाई, अगर की है, अगर की है इफ एट ऑल,
उन्होंने तो ये बात नहीं है कि नहीं,
वो कहते हैं हम तो नॉन गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया उस लड़की के साथ।
हो सकता है वो नॉन गिल्टी इसलिए प्लीड कर रहे हो कि वो
पैसे दे दिए उन्होंने,
उन्होंने जो है नहीं नहीं खातून का भी बीच में हाथ होगा कुछ तो इसलिए, अदरवाइज अदर देन दैट इट हैपन्ड एंड वो जो है वो
मैं थोड़े से बड़ा शक हो रहा है होते हैं
नहीं नहीं नॉन गिल्टी देखे ना आपने पहले से डील क्यों की है? अगर इतना कुछ था तो आप पैसों पर नहीं बुक
माजिद भाई, डील तो ट्रंप साहब ने भी की थी ना, पैसे दे दिए थे और फिर बाद में क्या कहा था शी इज नॉट माई टाइप
तो शी
पहले भी दिए
क्या हुआ ट्रंप साहब
हाँ जी
कुछ नहीं हुआ ना
हाँ जी हाँ जी
कुछ भी नहीं हुआ आराम से घूम रहे हैं, वो प्रेजिडेंट के लिए
फाइट कर रहे हैं। हाँ जी,
तो बस फिर
और फंडे उनके वही है, क्रिकेट हिलरी एंड शी इज नॉट माई टाइप एंड शी इज सो अगली। वो कौन सी थी सीएनएन की जो बेचारी एक कॉमेंटेटर थी, इसको कहा था शी इज सो अगली,
फॉक्स
की।
ट्रम्प
यस,
इनको सात खुद माफ है,
बिल्कुल बिल्कुल
है जी, ट्रम्प इज ट्रम्प एंड बट दे आर 70 मिलियन पीपल बिहाइंड हिम।
आपको पता है निकी हेली ने क्या किया वीकेंड में? उसने वो एल यूज करके ना ट्रम्प की नकली उतारी है।
दिस इज सपोज टू बी द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, उसके प्रेसिडेंट के लिए वो लड़ रहे
हैं।
एनी वे वी गॉट टू गो, थैंक यू सो मच।
5:35
पे आपने मगरिब की अजान सुननी है, बाकिया की बातें इंशाल्लाह ताला कल होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत, एंड अब मैं ले चलता हूँ आपको जीशान अहमद की जानिब, जहां पर वो सुनाएंगे आपको पहले तो जनाब मगरिब की अजान, और उसके फौरी बाद कुछ हम नातिया कलाम आपको सुनवाएंगे। बकिया की बातें होंगी कल, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
मैं तो पंज तन का गुलाम।
सामने करम टोरंटो गिरदुनवा के इलाकों में अब टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का, तो आइए सुनते हैं मगरिब की अजान।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
सुन रहे थे आप प्रोग्राम सास आवाज, और मेरा नाम आरफा मुजफ्फर। साहब ये चैनल आपका अपना है, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com है। بہت سی جگہوں پہ جب آپ کو اسٹیٹک ملتا ہے تو ہمارا لوکل نمبر 6478724900 آپ پروگرام کو بالکل سن سکتے ہیں اپنے فون پہ, اور جب آپ کا امپورٹنٹ فون آئے گا تو آپ اپنی کال لے لیجئے گا. اس پروگرام کو ہم یہیں اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام کو ضرور یاد رکھیے جو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں. کہتے ہیں اچھا کرو, اچھا بو, اچھا کاٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور وہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی منزلوں کو آسان کرے, قبروں کو جنت کے باغوں کا حصہ بنا دے. آمین سم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے اور رزق عطا کرے اپنی جناب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم تمام کو اپنا محتاج کرے, کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے. ان سب کے ساتھ جانے والوں میں مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, ایک دعا کی طرف بڑھتے ہیں میری جانب سے. خدا حافظ.
سب بے کرم ایک سا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.
کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی
تجھ سے دعا مانگتا ہوں. WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birash Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
Happy.